हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज 29 नवंबर है और हम लोग कृष्ण भगवान की अनंत कृपा से आशीष्वर धाम में बैठे हुए हैं। तो मैं पहले कह रहा था आपसे कि भगवान यहाँ पर नंद महाराज और यशोदा मैया के आनंद के लिए बालक बन के डोलते हैं, सबको आनंद देते हैं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि इति दृक् स्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाज्जंतम आख्यापयंतम, कि भगवान बालक बनकर जब आए कृष्ण बलराम दोनों, तो उन्होंने सभी गोकुलवासियों को नंदगांव वासियों को सभी जहाँ जहाँ भी डोले सब लोगों को आनंद के सागर में डुबो दिया। क्योंकि जैसे कोई काला कलोटा आदमी भी हो लेकिन जब वो बालक होता है छोटा सा तो भी लुभावना होता है ना। कितना भी कुरूप आदमी हो लेकिन वो बालक रूप में जब रहता है एकदम काला कलोटा बालक, तो बालक रूप में बहुत लुभावना होता है, सबका दिल को वो छीन लेता है, आकर्षित करता है, आनंद भी देता है अपने दुतले दुतले बोल से, चलने से, खेलने से। तो आप सोच सकते हैं कि सर्व सौंदर्य सौंदर्य से भरे हुए जो है भगवान हैं, वो जब बालक बन के आते होंगे तो कितना आकर्षक होते होंगे। इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं सब आकर्षक हैं, लेकिन जो भगवान की बाल लीलाएं हैं वो बहुत मधुर है और बहुत दिल खेचक हैं, वो किसी भी व्यक्ति का दिल मोह लेती है। तो ये वो भूमि है जहाँ पर कृष्ण बलराम बालक बनकर आए, यहाँ पर गैया चराई, बछड़े चराए और यहाँ पर ऐसा सुंदर वर्णन भागवत में आता है कि जब भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया गोकुल में, वहाँ से आए 3 साल 4 महीने के बाद में आए, 3 साल 4 महीने तक वो गोकुल में रहे, वहाँ पर वो जन्म हुआ, जन्म से बाद में गोकुल आए, पुतना का वध हुआ, तब कुछ ही दिन के थे वो, 5-6 दिन के थे, पितनावर का वध हुआ, फिर शक्टासुर का वध हुआ, फिर बकासुर का हुआ, फिर अगासुर का हुआ, ऐसे बहुत देर तक वहीं रहे। बहुत कंस का आतंक हो गया वहाँ पर, बहुत तकलीफ हो गई, तो सब बड़े ग्वाल बाल आए और सोचा उन्होंने कि ये जगह भी सुरक्षित नहीं है, अभी हमको नंदगांव लौट के जाएंगे, जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ लौट के जाएंगे। वहाँ पर तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ से गए थे, वृषभानु बाबा भी वहाँ से बरसाने से गए थे रावल में, सब जमुना किनारे पे ही है, गोकुल है, रावल है, सब जमुना किनारे पे है। तो वहाँ पर गए और फिर उनको कन्या हुई, इनको पुत्र प्राप्ति हुई, फिर कुछ समय के बाद में वो लौट के यहाँ पर आए। जाने का कारण था कृष्ण के लिए, आने का कारण था भी कृष्ण के लिए। तो उनका जो भी होता है, अभी कथा जो बताऊंगा उसमें भी आपको पता चलेगा कि एक कृष्ण भगवान के आनंद के लिए भक्त लोग क्या नहीं करते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं। तो भागवत में वर्णन आता है कि जब थोड़े थोड़े रेंगते रेंगते भगवान हो गए दोनों कृष्ण बलराम, तो वो गौशाला में जाते थे, तो गौशाला में सुबह उनको जाते वक्त चंदन अगुरु और सब कुछ लगा के, श्रृंगार करके, मोर पंख लगा के, धोती पहना के और अलंकार बाजूबंद, सब कमर पट्टा लगा के, हाथ में बांसुरी देके लकुटी देके भेजते थे। लेकिन ये गोकुल गौशाला में जाके पूरे गोबर और गोमूत्र में पूरे फंस जाते थे, पूरे एकदम कीचड़। तो यशोदा मैया कहती थी, अरे मेरे घर पे कैसे सुअर पैदा हो गया, सब कीचड़ मूत्र में घूमता हुआ, ये मेरे कुल में कैसा उत्पन्न हो गया ये। बोला, हाँ मैं शुक्र ही हूँ, पहले भी शुक्र था, अभी भी शुक्र हूँ। माता को समझ में नहीं आ रहे वो क्या बोल रहे हैं पहले शुक्र बने थे ना, वरा अवतार लिया था ना उन्होंने, तो गर्भोदक सागर में जो छलांग लगाई थी, नीचे गए थे, सत्तल पे गए थे, पृथ्वी को उठाया था उन्होंने, तब तो पूरे कीचड़ में तो गए थे वो। और फिर क्या किया उन्होंने, वहाँ पर जाके जब पृथ्वी को अपनी जगह पे रखा तो ऐसे ऐसे हिले वो, जैसा जानवर हिलता है ना, कभी कुत्ता देखा ना आपने, तो पानी गिरता तो कैसे ऐसे ऐसे हिलता है ना पानी उड़ाने के लिए। तो वरादेव के शरीर से जो पानी उड़ा वो पृथ्वी पर टिका आके, उसमें जो घास पैदा हो गई वो क्या है, कुशा, जो हम लोग पूजा में वहाँ पड़ते हैं ना, पवित्र बोलते हैं उसको, पवित्र, वो कुशा जो घास है वो वरादेव के दिव्य शरीर से निकला हुआ जो जल है, जिसमें जो भूमि पर गिरा उसमें से घास आया, वो यज्ञ के लिए वापरते हैं हम, यज्ञ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। भगवान का जो एक एक गतिविधि भगवान की, एक लीला जो है भगवान की, वो परम पावन है, वो हर जगह पवित्रता और अनोखा दिव्यता उत्पन्न करती है। तो ठाकुर जी मन में बोल रहे, हाँ मैं सुखरी तो हूँ, मेरा ये आदत है कीच में घूमना गोबर में गौमूत्र में लिप्त हो गए हैं। तो ऐसे ही वो इसका श्लोक है, मेरे को दिन सुंदर ने सुनाया था उस श्लोक को, ये कैसे वो यशोदा बोल रही है अरे मेरे घर पे कैसे उत्पन्न हो गया ये, ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं उसको। तो ऐसे ही वो गौशाला में खड़े हैं तो रेंगते हुए हैं, रेंग रहे हैं, और आप देखते हैं ना रेंगते ना बालक तो कुछ 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 चीज़ को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, ऐसे इसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया और खड़े हो जाते हैं और खड़े खड़े आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तब ऐसे वो क्या करते हैं, बछड़े की पूंछ को पकड़ते हैं, उनके लिए खड़ा होने का एक साधन है, वो ऐसा करके पकड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं। जैसे खड़े होते हैं तो बछड़ा जो है ना बिसर जाता है एकदम, कौन पूंछ खींच रहा है, एकदम डर के मारे भागने लगता है। तो बछड़ा भाग गया तो क्या हो गया, पूंछ आगे गई ना उसकी, ये पूंछ के छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखा है पूंछ, तो क्या होता है जमीन पे गिर जाते हैं, हाथ में पूंछ है पेट जमीन पर है, अब बछड़ा भाग रहा है इसके पीछे स्केटिंग हो रही है पूरी, हाँ एकदम महीन जो बनाया ना कीचड़ वहां पर गौमूत्र और गोबर से बढ़िया फर्स्ट क्लास ग्राउंड बना हुआ है, कोई कोई उसमें कुछ तकलीफ नहीं है, कोई पत्थर नहीं कंकड़ नहीं कांटा नहीं कुछ नहीं है, फर्स्ट क्लास वो बछड़ा भाग रहा है, कृष्ण बलराम दोनों पूंछ पकड़े हुए हैं और सारे गौशाला में घूम रहे हैं गोल 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 गोल। रोहिणी आती है देखती है आंखों में आंसू लेकर, देखो कितना मनोहर दृश्य है, क्या श्रृंगार करके भेजा था, क्या श्रृंगार अभी दिख रहा है, बढ़िया से एकदम। और जा रहे हैं यशोदा मैया, यशोदा दीदी आ जाओ, आ जाओ दीदी आ जाओ, देखो देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, वर्णन नहीं कर पा रही वहाँ का आनंद जो है, कितना वर्णन करेगी, क्या क्या वर्णन करेगी, हम तो कुछ थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, लेकिन जब देखते हैं हम लोग तो कितना अजीब चीज आपको आंखों से ग्रहण कर रहे हैं और सुनने में कितना कम मालूम पड़ेगा। तो फिर वो यशोदा जी आती हैं, वो देखते हैं अरे बछड़े का पूछ पकड़ के ऐसा कोई खेल होता है क्या, केवल कृष्ण भगवान ही कर सकते हैं ऐसा, हाँ घूम रहे गौशाला में, दोनों की आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, ऐसा अनोखा आनंद जो है कृष्ण भगवान ने किसी और लीला में नहीं दिया है, सब में अवतार में लीला करते हूँ, शुक्र में करते हैं, मत्स्य में करते हैं, हाँ वामन लीला में करते हैं, सब में लीला करते हैं, लेकिन ऐसी अनोखी चटपटी लीला जो है ना वो दिल को ऐसा आनंद देती है वो उसमें भी नहीं मिलता है। हम सुनते हैं कि वो जल में गए, पृथ्वी को उठाया, कक्षा में रख दिया, ऐसा छिड़का पानी, फिर वहां से हिरण्याक्ष आया, फिर हवा में युद्ध हुआ, फिर हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जय श्री राधे, हिरण्याक्ष मारने वाले वरा भगवान की जय हो। लेकिन जब ये सुनते हैं कि भगवान बछड़े की पूंछ पकड़ के हाँ गोबर और गौमूत्र के मिक्सचर में स्केटिंग कर रहे हैं, ये कितना दिव्य आनंद है। तो ऐसे यहाँ का जो विशेषता है, गौलोक धाम के अंदर भी आनंद में ऐसे बताते हैं, क्योंकि गौलोक धाम में भगवान जो है 16 वर्ष के नव युवक रहते हैं, किशोर अवस्था में रहते हैं, यहाँ पर बाल दर्शन नहीं है, बाल दर्शन यहाँ पर है, जन्म होना रेंगना तोतले बोल बोलना ऐसे कुछ नटखट शरारते करना ये सब बालपन की एक्टिविटी है ना कला। तो शिवजी महाराज जो है हमारे वैष्णवानान यथा शंभू, सभी वैष्णव में उनको परम वैष्णव माना गया है, बड़े भगवान के भक्त हैं वो, तो वो समझ लेते हैं कि ठाकुर जी आए हैं नंदगांव में आए हुए हैं और उनका दर्शन गौलोक वृंदावन में भी नहीं है बालक रूप का, तो कैलाश छोड़ के यहाँ तक आ जाते हैं दर्शन करने के लिए बालक रूप का, अरे मेरे आराध्य भगवान जो है प्राणेश्वर वो बालक बन के लीला कर रहे हैं यहाँ पर, जरा देखने देते ना। अगर आपको बताया जाए कि हमारे मफतलाल जी ड्रामा में सार्वभौम भट्टाचार्य का रोल कर रहे हैं तो जाएंगे आप, रे अरे हमारे मफतलाल जी रोलिंग देखो तो विश्व गो एंड सी, हाँ या विश्वरूप दास जल्लाद बने हुए हैं हरिदास ठाकुर के ड्रामा में, हाँ बड़ी बड़ी मूछ लगाकर मार रहे हैं हरिदास ठाकुर को, चलो देखने चले, हाँ ऐसे होता है ना, कोई बोले हमारे गुरुजी अभी नाटक में काम करने वाले हैं, सब लोग जाएंगे देखने के लिए क्या कौन सा रोल लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं बालक बन के आ रहे हैं तो व्याकुल होकर आते हैं कैलाश से, बड़ी आशा लेकर दर्शन देंगे, लेकिन शंकर बन के नहीं आते हैं, ऋषि बन के आते हैं, ऋषि बन के आते हैं नंदगांव में पहुँचते हैं नंद भवन पे, और यशोदा मैया जो है ना वो पहले से चिंतित है ना बालक के रूप में, क्योंकि जब से पैदा हुआ है तब से संकट चालू हो गए, अरे कोई सुंदर युवती आई घर पे गोकुल में यहाँ पर नहीं, और कह रहे कि हमको बालक को दे दो, तो बड़े प्रेम से दिया उसको, और कौन निकली वो 12 मील लंबी भयंकर राक्षसी निकली, थनों में एक आलकोट विष लेकर आई और बालक को दिलाने की कोशिश किया, मारने की कोशिश कर रही है, सोच सकते हैं तो हमारी भारी बालिका हमारे साथ में है, अगर हर रोज कोई पीछे आ रहा है उसको, कोई उसको विष दे रहा है, कोई उसको चाकू मार रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है, कोई राक्षस आ रहा है, कोई कुछ आतंक कर रहा है, तो क्या अवस्था होगी हमारी? हाँ, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, सनसनीखेज। एंड अच्छा हो रहा है लेकिन बिगिनिंग अच्छी नहीं है इसकी, बिगिनिंग में टेंशन है, अरे क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो सुंदर बालिका बन के आई, और सुंदर बालिका बन के आई और 12 मील की लंबी भयंकर राक्षसी बन गई। उसके बाद में एक ऐसा गाड़ी है, ऐसे गाड़ी रखी हुई है, उसके नीचे भाई बालक सुरक्षित है, वहां रख दिया उसको। तो वो राक्षस था जो गाड़ी बनकर आया था, शकट बोलते हैं उसको, शकट का मतलब है गाड़ी जिसमें हम लोग बैल जोड़ते हैं और उसको ले जाते हैं, उसको सामान डाल के। वो टूटकर गिरता है बालक के ऊपर, लेकिन बालक कृष्ण जो है वो खाली पांव ऊपर करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो बकासुर का भी यही है, खा लेता है भगवान को पूरा वो। अरे खायरो है, खायरो है, खायरो है, हाँ क्यों वल्लभ जी? अरे खायरो, खायरो है, खायरो है, खाएगो है, खाएगो। फिर ऊपर बाहर आते हैं, फिर उसको मार देते हैं। तो वो उनको पता है कि ये राक्षस जो है ना, कभी कन्या बन के आ रहे हैं, कभी गाड़ी बन के आ रहे हैं, कभी हवा बन के आ रहे हैं, कभी पक्षी बन के आ रहे हैं, क्या क्या बन के आ रहे हैं, रोज नया रूप है इनका। अरे आज ऋषि बन के आया है, शंकर भगवान आ गए ना वहां पर। बोलते नहीं, बिल्कुल दर्शन नहीं दूंगी। वो कह रहे मैया दर्शन दो, बड़ी दूर से आए हम, बड़ी आस लेके आए हैं, दर्शन दो। बिल्कुल नहीं दूंगी दर्शन, आप सब लोग कभी ये बनते हो, कभी वो बनते हो, ये बनते हो, बड़े बड़े बहाने बनाते हो, आज ऋषि बन के आ गए, अरे महात्मा बन के आ गए आज आप, हाँ बड़े 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 अच्छे अच्छे भेष हैं आपके। नहीं मैं तो सच का सचमुच का महात्मा हूँ। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो, कह दिया ना नहीं। लो हीरे मोती लो, चावल लो, अनाज लो, जो लेना ले लो, दफा हो जाओ यहाँ से, लाला के दर्शन नहीं देंगे। बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं। बोले हम उस मोती हीरे के लोभ में नहीं आए, हम लाला के दर्शन के लोभ में आए हैं। अरे सब लोग ऐसा ही कहते हैं यहाँ पर, सब लोग जो है यही कहते हैं, बड़े निर्लोभी, बड़े निर्मोही, बड़े ऐसे भी विरक्त नजर आते हैं, आखिर में मेरे कान्हा का जो है अहित करते हैं, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ऐसा करके दरवाजा धाड़ करके बंद कर देती है। और हमारे शिवजी महाराज बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे इतना दूर से आए हम, इतना प्रयास किया लेकिन यशस्वी नहीं हो रहे मन की इच्छा पूरी करने के लिए। तो वहां से जब आप वहां गए ना अभी, वहां से यहाँ आ जाते हैं, इस वन में आके बैठ जाते हैं और बड़ी रोते हैं यहाँ पर, उनके दर्शन की आशा में बहुत रोते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं। तो आप जानते हैं ना हमारे ठाकुर जी जो हैं वो अंतर्यामी हैं, सबके दिल की बात जानते हैं। अरे मेरा भक्त रो रहा है, माता ने मेरे मना कर दिया, जंगल में जाके बैठा है, बेचारा रो रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, दर्शन की आस में रो रहा है बेचारा। कुछ करना चाहिए ना, हाँ मैं बालक हो तो क्या हुआ, कुछ करना चाहिए। तो बालक का सबसे बड़ा असर क्या होता है बताओ, इसमें बड़े बड़े महारथी भी हार जाते हैं जब वो अस्त्र निकालता है ना वो। तो हमारी बेटी जब रोती है तो हम दिन में बहुत मैनेजमेंट करते हैं, बहुत डिसीजन लेते हैं, धनाधन एकदम एक से एक के बाद एक, लेकिन जब वो रोती है तो हम हार जाते हैं। बोले क्या करें अभी, हरे हे कृष्ण हे गोविंद, क्या करूं अभी। असहाय हो जाते एकदम। तो वैसे हमारे कन्हैया जी रोने लगते हैं, तो मैं कहता है भूख लगती होगी, तो माखन देती है, माखन भी नहीं चाहिए। नहीं मेरे स्तन का दूध चाहिए होगा शायद, माखन पसंद नहीं, दूध दूध पीना है, स्तन पे लगाती है, ओ नहीं चाहिए, रोता है, तो खिलौना देती है, गाना गाती है, कुछ नचाती है, कहीं गाड़ी में घुमाती है, सब कुछ करती है, लेकिन कन्हैया जो रोता रोना बंद नहीं करता है, और जितना प्रयास कर रहे उतना अधिक रोना और अधिक रोना और अधिक रोना शुरू कर देता है। तो बड़ी परेशान हो जाती है, सखियों को बुलाती है, देखो देखो क्या करना है, रो रही है, रो रहा है हमारा खाना। वो भी कुछ कुछ करती है, कुछ कुछ आते ना सहेली आती है, कोई फ्रेंड आते हैं, नेबर आते हैं, कुछ कुछ का गीत गाते हैं, कुछ हिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं, यहाँ से यहाँ डोलते हैं, कुछ नहीं। उनका जो रोने का प्रमाण है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कुत्ते में वहां से पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी कौन है पता है आपको? पूर्णमासी जो है वो पूर्णमासी पुरोहिता नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन है कौन? वो माया देवी है, वो जो यहाँ भजन कर रहे हैं ना उनकी पत्नी है, वो कैलाश से आए ना उनकी पत्नी पार्वती है, वो ब्रजलीला के अंदर पूर्णमासी बनकर आई है। हाँ वो क्या है, सांदीपनी की माता है वो, सांदीपनी मुनि जो कृष्ण भगवान के आगे गुरु बने ना, उनका पुत्र है मधुमंगल, जो भगवान का बड़ा प्रिय सखा है, मोटा सा जो डंडे खाता है बाद में लड्डू खाता है वो जो तो पूर्णवासी जो है वो इसका क्या सेवा है, वो सभी गोपियों की गुरु हैं। सभी गोपियां जो बुजुर्ग गोपियां हैं ना, वो उनको सलाह पूछती हैं, कुछ मुहूर्त निकालना है, कुछ सलाह लेनी है, कुछ पूछना है। ए, पीछे नहीं बैठना कथा में, आगे बैठो। तो वो आज ही आती वहां पर, अभी बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, तो भी दिखते, अरे बालक रो रहा है, उसको सब पता है, अरे हमारे पतिदेव आए थे, इन्होंने उनको दर्शन नहीं दिलाया। तो पूर्णमासी को क्या किया जाए, रो रही है हमारे कान्हा रो रहे हैं। तो वो कहते हैं, अरे यशोदा, मेरा ऐसा विचार है कि वो जो महात्मा आए थे बड़े बड़े विभूति थे, वो बड़े तेज वाले बाबा थे, वो बड़े भक्त थे, महात्मा थे, लगता है कि उन्हीं को बुलाया जाए, हो सकता है उनके आशीर्वाद से, उनके विभूति से कुछ फर्क पड़ जाए। तो मैया कहते, जाओ 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 जाओ, उसको बुला ले आओ। सखियों को भेज देती है और बुला लाती है उनको। अभी आप सोच सकते हैं, उसी व्यक्ति को भगा दिया गया है कुछ समय के लिए, और उसी व्यक्ति के लिए आदर से सखियों को भेजकर बुलावा दिया जा रहा है। वही व्यक्ति है, वही यशोदा है, लेकिन कृष्ण भक्ति का भाव यही है। कृष्ण के लिए एकदम उल्टा काम भी कर सकते हैं, जो पहले किया था उसके एकदम उल्टा काम कर सकते हैं। अभी उसको भगा दिया है, उसी का उल्टा काम क्या है, स्वागत करना, वो भी कर सकते हैं। केवल एक है उसके पीछे उद्देश्य, समसिद्धिर हरितोषणम, कृष्ण भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो आज किया था उसके उल्टा कल करने को तैयार है। तो हम परसों मंदिर में प्रवचन कर रहे थे, उसमें भी यही विषय था, भगवान को पसंद करना, यही हमारे जीवन के सारे दुखों को नष्ट करने का, कर्म बंधनों को नष्ट करने का, जन्म जन्मांतर के बंधन को नष्ट करने का एकमेव मार्ग है। इसलिए जब भी करते हैं तो उनको तुष्ट करने के लिए करते हैं। कोई तपस्या करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई उपवास करते हैं, केवल एक ही उद्देश्य करते हैं, वो संतुष्ट हो जाए, कोई हमें कुछ मिले, हमारी पगार बढ़ जाए, हमारी प्रमोशन हो जाए, हमको सुंदर लड़का हो जाए। हाँ, लड़की नहीं, लड़की है, लड़का नहीं है, ये सब सोच के हमको भजन नहीं करना है। या हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो हम किसी को हाथ लगाएंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। तो MBBS है लेकिन अभी हमको वो सिद्धि नहीं है हमारे पास। चलो हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, अभी 10 दिन के बाद में, 10 साल के बाद में फिर हम हाथ लगाएंगे तो उसका कैंसर ठीक, उसका लीवर ठीक, उसका हार्ट ठीक, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे भी इच्छा लोगों को होती है कि हमें देख के लोग अच्छे हो जाएं। क्या डॉक्टर को देख के बीमारी आधी खत्म होती है, इनको देख के पूरी खत्म हो जाती है। तो ऐसे कोई भी मन में इच्छा रख के हमको भजन नहीं करना है। भजन करना है तो केवल उनको संतुष्ट करने के लिए, इस हद तक कि भजन करने से हमको दुख भी प्राप्त हो जाए, संकट हमारे जीवन में आ जाए, कष्ट आ जाए, हम बोले अरे हम भजन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, हम तो कुछ बुरा काम नहीं करते, फिर हमें क्यों होना चाहिए ऐसे, हमें क्यों ऐसी बीमारी होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आना चाहिए। लेकिन अगर उनको खुशी हो तो हमें कष्ट में मंजूर है। गोपियां क्या बोलती हैं, वो मथुरा गए हैं हमें छोड़कर, उनको उनको मजा आ रहा है छोड़ के हमको, अच्छी बात है। अगर हमारा यहाँ विरह में रहना उनको सुख दे रहा है, हम मन तैयार है उसके लिए। बहुत दूर नहीं था मथुरा, हाँ, कोई राम सिंह की गाड़ी में बैठकर जल्दी पहुंचते थे आधा घंटे में। हाँ, हम लोग जाते हैं ना मथुरा में, कितना मथुरा काम करने जाते हैं, सामान लाने जाते हैं, कितनी बार आगे पीछे करते हैं। तो गोपियां भी यही थी, उनके प्राणनाथ मथुरा में थे, यहाँ रो रही है, अश्रु बहा रही है, नदी बहा रही है, तो कोई मुश्किल नहीं था यहाँ से वहां जाना। लेकिन वहां जाना ठाकुर जी को प्रसन्न नहीं करने वाला था। वहां पहुंचकर अगर उनको मिलते और विरह की बात करते तो ठाकुर जी खुश नहीं होने वाले थे, संतुष्ट नहीं होने वाले थे। इसलिए वो यहीं पर तड़पती रही, 100 साल तक तड़पी वो यहाँ पर, लेकिन मथुरा जाने का प्रयास नहीं किया। वहां पूछा नहीं कौन सी बस जा रही है, कौन सा टांगा जा रहा है, कौन सी बैलगाड़ी जा रही है, हमको जरा छोड़ के आओ, कान्हा से दर्शन करना है। हाँ, लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, हम तो खाली वृंदावन से जाएंगे, नहीं। खुद को कष्ट भी हो जाए फिर भी ठाकुर जी को अगर खुश आनंद नहीं मिल रहा है तो हम लोग स्वीकार करेंगे उस कष्ट को। तो वही माता है, ठाकुर जी के रक्षण के हेतु वो ऋषि मुनि को भी भगा रही है, और ठाकुर जी रो रहे हैं, उसको शांत करने के लिए, आनंद देने के लिए कुछ कह रही है सखिया की बाबा को ले आओ, उसी बाबा को भेज रहे, जाओ इनको बुला ले आओ। दोनों एक्टिविटी जो है, एक उल्टी है, एक सुल्टी है। केंद्र बिंदु कौन है? ठाकुर जी। केंद्र बिंदु का एक्टिविटी क्या है? ठाकुर जी की प्रसन्नता। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। लोग बोले मूर्ख व्यक्ति है, आज ये किया कल वो कर रहे हैं, फिर भी करने को तैयार। ये भाव जो है ये केवल ब्रजवासी लोगों के अंदर, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी सॉरी रोहिणी और बाकी जो बड़े ग्वाल बाल हैं यहाँ के, वो एक ही भाव है उनका। हाँ, यहाँ से नंदगांव गए कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और यहाँ से गोकुल गए उनकी प्राप्ति के लिए, वहाँ से यहाँ आए उनकी रक्षा के लिए। रोज मीटिंग करते थे, क्या करना चाहिए। मीटिंग का एक ही एजेंडा होता है, कई मुद्दे नहीं होते मीटिंग के अंदर। नंद बाबा के जो वाल बाल हैं, रोज मीटिंग करते शाम को बैठ के, रोज चर्चा करते, आज क्या हुआ, अरे आज वो बकासुर आया था, ऐसे ऐसे हुआ, अब खदीर वन में ये लीला हुई, ऐसा हुआ, बहुत संकट आया था, अरे हमारे कनुआ ने उसको एंड में मार दिया, फिर वो आज क्या हुआ, मैया ने बांध दिया उसको, अरे दो पेड़ गिर गए, अरे बाप रे, थोड़ा से बाजू में गिर गए, अगर यहाँ गिरते तो बालक को क्या पता होता, अरे पता नहीं वो दो पेड़ जब गिरे दो देवता प्रकट हो गए उसके अंदर, पता नहीं कहाँ से आए थे और क्या क्या गुणगान कर रहे थे, क्या गीत गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे हमारे बालक की, अरे हमारा बालक बड़ा अद्भुत है। रोज चर्चा कर रहे हैं, जीवन का उद्देश्य है बस ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए, उनके आनंद के लिए ही वो मिलते हैं, प्लान करते हैं और दिन भर काम करते रहते हैं। हमारे लिए भी वही जीवन का उद्देश्य है, अलग उद्देश्य नहीं है। हम लोग सोचते नहीं वैसा, करते नहीं वैसा, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है, ठाकुर जी के लिए, उनके आनंद के लिए जीना है हमको, उनके तुष्टि के लिए जीना है। उनको दुख हो रहा है, वो एक्टिविटी कैंसिल कर देनी है। उनको खुशी हो रही है, हमको पसंद नहीं है वो काम, लेकिन उनको खुशी है तो वो करना है हमको। हमारी खुशी में और हमारे दुख में कोई मतलब नहीं है, उनकी खुशी में मतलब है। उनकी खुशी है और हमें दर्द है, नो प्रॉब्लम। हमें दर्द नहीं है, उनको खुशी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। नहीं चाहिए हमको खुशी जो उनको खुशी न दे, वो सुख हमको नहीं चाहिए जो उनको तुष्ट न करे। यही कृष्ण भावना है। भक्ति मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, भक्ति का रहस्य यही है, जो भी करो उनके आनंद के लिए करो। तो मैया जो है पहले किया हुआ कार्य उसका विपरीत कार्य करने को तैयार है, अब बाबा को बुलाने के लिए भेजती है। बड़े आनंद से बुलावा आता है तो आनंद से भागते हैं यहाँ से नंदगांव में, और उस वक्त बड़े प्रेम से रोते हुए लाला को लेकर मैया बाहर आती है। रो रहा है जोर से, एकदम आतंक मचा के रखा है, परेशान है सब लोग। भैया आते हैं और कुछ चरणों का दर्शन करते हैं, चरणों को पकड़ते हैं, सर पे लगाते हैं, एकदम रोना बंद। भगवान जानते हैं अपने भक्त पर कैसी कृपा करनी है। भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बालक बनकर रोने का आतंक बना सकते हैं, सबका जीना हराम कर सकते हैं। अगर किसी भक्त को रिझाना है कुछ भी कर सकते हैं वो। हमको पूरा विश्वास होना चाहिए इस बात पर कि वो जो है भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गोपियां बोलते नाचो, माखन चाहिए नाचो, हम तालियां बजाएंगे उस ताल पर आप नाचेंगे। तो पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक जो है, जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए, चरणों के किरण का दर्शन करने के लिए संत लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, वो ब्रह्मांड नायक जो है यहाँ पर तालियों पर नाचता है। ऐ ठुमके नगर नाचो, ये क्या ठीक से नाचो, नाचते हाँ लो थोड़ा माखन निकाल के देते हैं, बोले और दे दो सखी सर, और दे दो, बढ़िया माखन है, मीठा है, और चाहिए, और नाचो, और नाचते हैं। ऐसे लीला यहाँ की, क्योंकि भक्त पर बहुत प्रेम करते हो, जो उनका नाम जपता है, जो उनकी सेवा में बहुत प्रेम करते हैं, उस पर उससे उस पर किया हुआ अपराध कभी सहन नहीं करते वो। आप चाहे खुद में बड़े महात्मा होंगे, लेकिन किसी भक्त का अपराध करेंगे ना, वो कितना भी नव सीखा होगा, नया नया आया होगा, नया नया जप करना आरम्भ किया होगा, और आप बड़े महात्मा होंगे, आपने उसका अपराध किया तो वो माफ नहीं करते। उनके लिए कल आया हुआ और महात्मा बना हुआ दोनों वक्त समान है, मतलब सबके सब मूल्यवान है उनके लिए। जो भी उनको चाहता है, कोई समझेगा कि मैं बड़ा सीनियर डिवोटी हूँ, हाँ ये कल आया डिवोटी को मैं अपराध कर सकता हूँ, उसको डांट सकता हूँ, भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं है। भगवान सब पर प्रेम करते हैं, जो उनका नाम लेते हैं, उनको चाहते हैं, उनको तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, सब पर वो कृपा करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, लौट के जाओ नंदगांव से जाओगे, ध्यान रखना इस बात को कि वो अपने भक्त को रिझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे भक्त तो बनो पहले, भक्त बन के तो देखो क्या कर सकते ठाकुर जी आपके लिए, क्या नहीं कर सकते देख लो, आप अनुभव कर लो। और जो व्यक्ति को ऐसा विश्वास हो गया कि वो ठाकुर जी के चरणों में पूर्णतः संतुष्ट और आश्रित और सुरक्षित है, उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्या होने पर भी उसके जीवन में कोई समस्या नहीं, क्योंकि सब समस्या है या नहीं है वो ठाकुर जी के चरणों में लीन है, उसको कोई परेशानी नहीं है। तो भाग भाग जाते हैं, दर्शन करते हैं और तुरंत ठाकुर जी रोना बंद कर देते हैं। तो ये आशेश्वर महादेव का स्थान है। आशेश्वर आशा लेकर जो महादेव जी यहाँ पर आके बैठे हैं, वो ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया उन्होंने, ये उनका कुंड है, यहाँ पर वो रहे हैं शंकर जी भगवान। क्या सिखाते हैं हमको वो, कभी भी आशा को छोड़ना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। भक्त तो जो है कभी निराश नहीं होता है, प्रयास जरूर करेंगे। ठाकुर जी नहीं मिल रहे नहीं, प्रयास करेंगे और रगड़ेंगे और रगड़ करेंगे और जप करेंगे उनके नाम का, उनको पुकारेंगे, लेकिन प्राप्त जरूर करेंगे। हाँ, कितना अपयश था उनका, देखो आप, अरे कैलाश से आए वो, इतना दूर से क्या क्या भेष बनाकर आए ठाकुर जी को रिझाने के लिए, मनाने के लिए, ठाकुर दर्शन नहीं दिया उनको, यहाँ आके बैठे, ठाकुर जी को मजबूर किया। हाँ, ऐसा रोए, ऐसी आशा लेकर रोए, ऐसा प्रार्थना किया कि ठाकुर जी को रोना पड़ा उनके लिए और दर्शन दिया उन्होंने। हमें भी ऐसा समझना चाहिए कि भक्ति में कोई निराशा नहीं है। हाँ, कभी कोई कष्ट भी आता है जीवन में, आता है पीड़ा आती है, संकट आता है, धन खो जाता है, या कोई बीमारी आती है, कोई संकट आता है, कोई समस्या है जीवन में हमारे, कोई घर में पागल है, कोई घर में रोगी है, कैसा क्यों हो रहा है, हम भजन कर रहे हैं, हम नियम पालन कर रहे हैं, मांस नहीं खाते, चाय तक नहीं पीते और दिन भर जब करते रहते हैं, मंगला में जाते हैं, सुबह उत्सव में जाते हैं, उपवास करते हैं, एकादशी का कार्तिक में व्रत करते हैं, हमारे लिए ऐसा क्यों होना चाहिए, सबको लगता है। लेकिन ठाकुर जी जो है कभी किसी को बुरा नहीं करते, कभी किसी को जो अच्छा नहीं उसके लिए वो नहीं करते। लगता है इसको, कह रहे क्या माँ कड़वी दवा दे रही है, कितनी दुष्ट माँ है, लेकिन माँ कभी बुरा नहीं करती, कड़वी दवा भी दे रही तो बालक को अच्छा करने के लिए दे रही है ना। तो ऐसे शिव जी यहाँ बता रहे हैं, कितना भी बुरा समय आए जीवन में, कितना भी संकट आए, रोग आए, कष्ट आए, तो भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा जो है ये माया का लक्षण है। अगर आप निराश हो गए मतलब माया सफल हो गई, आपको क्या कहते हैं उसको, डिस्करेज करने के लिए वो सक्सेसफुल हो गई। वो क्या चाहती है माया, कि भक्त जो है भगवान की भक्ति से परावृत्त हो जाए, हट जाए भक्ति से और मेरे ही वश में रहे, तीन गुण के प्रभाव में रहे, ताकि मैं उसको पिटती रहूं अच्छी तरह से, अच्छी तरह से दंडी देती रहूं उसको, आदि दैविक आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक, हर तरह से पिटती रहूं। इसलिए वो निराश करने का प्रयास करती रहती है। आप निराश हो गए मतलब उसके वश में आ गए, और निराश नहीं मतलब भगवान के वश में रहे हमेशा। तो शिव जी से हम लोग यही सीखते हैं, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल के बाद ठाकुर जी जरूर मिलेंगे। वो खाली अपनी परेशान लेते हैं, अगर वो तुरंत दर्शन देते तो यहाँ के वो तपस्या नहीं करते, यहाँ के रोते नहीं उनकी, वो चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है थोड़ा सा और रगड़ करे मेरे लिए। उनको भक्तों को तड़पाने में आनंद आता है, भक्त भी कहता है अरे आनंद आ रहा है और मैं तड़पूंगा, कोई बात नहीं, आपको हमारे तड़पने में आनंद आ रहा है, नो प्रॉब्लम सर, हम तड़पेंगे आपके लिए, आप बोलो आपको किस में आनंद आता है, हम वो करेंगे। हनुमान जी ने क्या किया, अरे सीता देवी क्या कर रही है आप, नहीं सिंदूर लगा रही, क्यों, नहीं राम जी को बड़ा आनंद आता है उसको देख के, सिंदूर मांग में लगाती हूँ तो बड़ा प्रसन्नता होती, अच्छा क्या किया उन्होंने। हाँ हाँ, नहीं हम तो तुरंत आ गए बाहर, हम कोई दर्शन नहीं, नहीं 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 सर, नहीं भाई साहब नहीं मिला, नहीं मिला, अच्छा अच्छा नहीं मिला तो, अच्छा शायद ले लिया उन्होंने। अरे राधे श्याम, तस्याहम अनुगुणामी हरिश्चे तद धनम शनि, ले लिया उन्होंने
शंकर जी ने पहन लिया।
तो क्या कह रहा था मैं, क्या बोल रहा था, हाँ और ये पूरे शरीर पर लगा दिया और हनुमान जी श्री राम जी के रास्ते में बैठ गए, तो राम जी आए वहां से, बोले ये क्या हो गया, ये क्या करके रखा है, ऐसे क्यों बैठे हो, बोले सीता मैया ने कहा कि जब वो सिंदूर में मांग में सिंदूर भरती है तो बड़ा आनंद आता है उनको, तो मैंने कहा अगर मैं पूरे शरीर में लगाऊं तो कितना आनंद आएगा आपको। कुछ भी करने को तैयार रहता है। जैसे भगवान जो है ना, भगवान अपने भक्ति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान के भक्त भी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो हंसी मजाक के योगी क्यों ना हो, लेकिन करते हैं, लेकिन उनका भाव ऐसा है उनका। हाँ, तो हमें भी हमेशा तैयार होना चाहिए। देखो ऐसा है ना, जैसे डॉक्टर है कोई, मरीज उसको आता है और वो अगर बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, जो दवा देना है, जो नहीं देना है, क्या करना है, आपके पूरा हाथ में, मैं आपको जो करना है करो, मैं आपके बस में हूँ। डॉक्टर दिलो जान से कोशिश करेगा उसको अच्छा करने का। और मरीज बोलेगा देखो डॉक्टर साहब आप मुझे दवा दो मैं खाऊंगा, क्योंकि पत्ते बोलेंगे ना वो मीठा नहीं खाने का, वो तला हुआ नहीं खाने का, कचौड़ी नहीं खाने का, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर बोले मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो पूरा सुनो मेरा तो पूरे अच्छे हो जाओगे, और बोलेगा आधा सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए क्या जरूरी है, 100% सरेंडर जरूरी है। डॉक्टर को भी उत्साह आएगा कि यार मेरे वश में आ गया पूरा, ये कंप्लीट मेरे ऊपर निर्भर है, तो पूरी कोशिश करेगा वो ठीक करने का। और बोलेगा ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, मुझे सुबह उठना नहीं जमेगा, बोलेंगे 5 बजे उठ के दवा खाओ, मैं तो 8 बजे उठता हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ, आप ऐसे दवा दो जो मैं 8 बजे बाद खा सकता हूँ। ऐसा मरीज को डॉक्टर को इच्छा अच्छा करने में मूड नहीं होता है उसका, वो क्या करेगा उसके लिए बेचारा। उसी तरह से हमको भी ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने के तैयार होनी चाहिए, और ठाकुर जी भी हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हमको वो व्यक्ति बनना चाहिए। शिव जी यहाँ बड़ी प्रेरणा देते हैं, ये आंसू है ना, आंसू बहुत प्रकार के होते हैं। कोई बीवी मर गई तो रोता है, कोई बालक मर गया तो रोता है, कोई पिताजी मर गया रोता है, कोई उसका चोरी हो गया अभी तक, उनका अंगूठी रो गया, क्रोध आ गया उनको, झगड़ा कर रहे थे वहाँ पर, हाँ जोर जोर से, ए अंगूठी कहाँ गई हमारी, तो उसके बाद धन चोरी हो गया, किसी का कोई लूटा लूट गए, कोई कोई हाँ किस पे कोई डकैती आ गए, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, तो आंसू आते हैं। वो आंसू आते हैं ना, उससे हम लोग इस दुनिया में अधिक बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन जो ठाकुर जी के आंसू बहाते ना, वो हमको जीवन के बंधन से मुक्त कर देता है। नकली आंसू नहीं, नकली आंसू आएंगे ना ऐसे ठाकुर जी के प्रेम में, नकली आंसू बहते हैं ना, कोई नाटक करता है ना, तो कहते हैं कि जो भी प्राप्ति हुई है वो भी धुल जाती है, पूरी धुल जाती है पूरी, जितना प्राप्ति पहले किया था ना भजन करके, वो आंसुओं में नष्ट हो जाती है। लेकिन जो सही आंसू होते हैं ना, शिव जी यहाँ पर ओनली फॉर कृष्णा, केवल कृष्ण के लिए रो रहे हैं, तो वो आंसू जो हैं जन्म जन्मांतर के बंधन को नष्ट कर देती है, जला देती है, ख़त्म कर देती है। अरे ये रास्ता है ना यहाँ से वहाँ, हम लोग बरसाने से आए ना, पूरा आंसुओं का चक्कर है वहाँ पर। एक कुंड ऐसा है, मैं आपको रुकने का बहुत मुझे दिल कर रहा था, लेकिन सब लोग नंदगांव की बात कर रहे थे, उसका नाम है प्रेम विवल कुंड। क्या बताया, प्रेम विवल कुंड, विवला कुंड, वो भी आंसू का कुंड है। उसके बाजू में एक कुंड है प्रेम सरोवर, वो भी आंसू का कुंड है। उधर जमुना पार एक कुंड है मान सरोवर, आप लोग कुछ लोग आए थे यात्रा में, वो भी आंसुओं का सरोवर। हाँ, बहुत आंसू के सरोवर यहाँ पर हैं। तो प्रेम विवला कुंड की कथा क्या है कि राधा रानी एक बार भाग भाग के जा रही थी देवी की पूजा करने के लिए। हाँ, देवी की पूजा करने जा रही थी तो उसको रास्ते में कन्हैया मिल जाते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? बोले देवी की पूजा करने जा रही हूँ। अरे देवी की पूजा करने जा रही हो? यही देवी है, इसके अंदर देवी है, जाओ देखो, पूजा करो उसकी। तुरंत मुड़ जाती है, भोली भाली है राधा रानी, उसको जाओ तो जाती है, सब जगह ढूंढते कोई देवी नहीं है वहाँ पर। लौट के आती है तो बोलते देवी नहीं मिली, अरे वही तो है, अभी तो दर्शन करके आया मैं, जाओ दोबारा जाती है, सब ढूंढ के आती है, कोई देवी नहीं वहाँ पर। तीसरी बात ये, क्या परेशान कर रहे हो आप, देवी तो है नहीं। अरे मैं बोला ना आपको, अभी मैं दर्शन करके आ रहा हूँ, अभी आपको जरूर मिलेगा, आप जाओ। जाती है, सब जगह ढूंढ के आती है, तो उस जगह पहले ढूंढ चुकी है, वहाँ नहीं मिली है, वहाँ देवी मिल जाती है उसको, खुश हो जाती है, अरे मिल गई देवी, पहले कहाँ थी, मैं तो ढूंढ के आई सब जगह पर, नहीं मिली, कोई बात नहीं, मिल तो गई है, चलो प्रार्थना आरम्भ करो। तुरंत पूजा सामान निकालती है, आरती वारती करती है बहुत देर तक, और आरती करते करते देखती है अचानक देवी आँख झपकती है। अरे देवी मतलब ऐसे रह गए ना वो, या अभी तक आँख झपकते बीच में, तो समझते गए कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान जो है देवी बन के खड़े हो जाते हैं ऐसे, कितनी देर आँख ऐसे बंद नहीं करेंगे, ऐसे खड़े कैसे हो जाएंगे, बंद कर देते हैं, तो समझती है अरे तुम देवी बनकर आए हो। हाँ, तो ऐसे अद्भुत भाव में आंसू बहने लगते हैं उनके, इनके आंसू बह रहे हैं, इनके भी आंसू बहने लगते हैं, मतलब एकदम अचंभा होता है ना उनका, अरे तुम देवी बन के आए, ऐसे खुशी से आंसू बह रहे हैं, और वो दोनों आंसू एकत्र होकर वहाँ कुंड बनाए हैं, विवल कुंड, एक दूसरे के प्रति प्रेम से विबल होकर बना हुआ कुंड है वो, इसलिए उसका नाम बिबला कुंड है, बहुत सुंदर कुंड है। यहाँ पर जो कुंड है प्रेम सरोवर, उधर क्या लीला है, एक दिन कृष्ण और राधा रानी जो है अपने सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और आंखों में आंखें डालकर बैठे हुए हैं। उसको कहते हैं हिप्नोटिज्म, मालूम है सम्मोहन क्या होता है, जब प्रिया प्रीतम के आंखों में देखते हैं तो दुनिया का बाकी सब माहौल नष्ट हो जाता है, केवल वो आंखें ही बच जाती है। हाँ, उसमें गहराई में उतरते हैं उतरते हैं, कोई इतनी गहराई है उसके अंदर है कि वो जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, सब दुनिया उनके नष्ट है, कुछ भी दुनिया में नहीं है, खाली उनकी आंखें बस। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी राधा रानी की आंखों में देख रहे हैं और देखते जा रहे देखते जा रहे देखते जा रहे हैं, और उनका आनंद आ रहा है, उनको इतना प्रेम से आनंद आ रहा है। उतने में एक जो है ना मधु भवरा भवरा होता ना, वो एकदम डार्क काले रंग का होता है, आपने देखा होगा ना, वही घूमता रहता है वो भवरा जो है, वैसे जब ऐसे बीच में बैठे तो वो ऐसा गोल गोल ऐसे घूमने लगता है उसके, तो डिस्टर्ब होता है। तो ठाकुर जी कहते हैं, ए मधु मंगल, वो भवरे को हटाओ, मधु को हटा दो, उसका भी नाम मधु है और भवरे को मधु कहते हैं, चले मधु मधु को हटा दो। तो मधु मंगल आता है और भवरे को हटा देता है और कहता है मधु चला गया, और कृष्ण का नाम भी मधु है। हाँ, कृष्ण का नाम भी मधु है। तो राधा रानी उनकी आंखों में देख रही है, तो कान से क्या सुनती है, मधु चला गया, तो उनको लगा कृष्ण चला गया, उनकी आंखों के सामने है लेकिन मन में क्या भाव है कि चला गया वो, तो रोने लगती हो। ये सब समझना बहुत मुश्किल है, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसका दिल जो है प्रेम भक्ति से एकदम संपृक्त हो गया है, उसी को ये समझ में आ सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सामने बैठा बैठा है अपना प्रिय व्यक्ति जो है और वो बोल रहा है कि चला गया, तो उसको लगा चला गया, सामने खड़ा है, बोले फीलिंग नजर में नहीं आ रहा है, दुख में चली जाती एकदम, बहुत दुख में, और रोने लगती ठाकुर राधा रानी। राधा रानी का भिरह देखकर कृष्ण भगवान जो सामने बैठे हुए हैं वो भी रोने लगते हैं, उनका भिरह देखकर इनको भी दुख होता है, और दोनों रोते हैं और कुंड बनता है प्रेम सरोवर। ये मेरे समझ में नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। प्रेम क्या चीज है हमको समझ में क्या आएगा, हमारे दिल में इतना काम है, इधर इतनी वासना है, इतने हमारे मन में केलमश है, द्वेष है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ गलत बात फैल बैठी हुई है, ये ऐसे माहौल में क्या प्रेम होता है, क्या समझ में आ सकता है हमको। लेकिन फिर भी हम जाते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए कि उस जगह के सान्निध्य से थोड़ी बहुत शुद्धि हमारी हो सकती है, उसके बारे में सुनकर या कहकर थोड़ा बहुत हृदय में जो गंदगी है वो नष्ट हो सकती है, ये आशा से हम जाते हैं। हमको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि कैसे हो सकता है, वो प्रियतम सामने बैठा है और उसके विरह में रोया जा रहा है, ये बड़ी अजीब बात है, ये प्रेम से हो सकती है। मान सरोवर में राधा रानी गई, वहां पर कृष्ण भगवान थोड़ा देर से आए रास में, तो गुस्सा हो गई, वो गई जमुना पार जाके बैठ गई और एकदम गुस्से में और विरह में आंसू बहाए उसने। हाँ, सांवरे तेरे लिए ही बरसते हैं ये आंसू, रोकते पर नहीं रुकते, रुकने से ही नहीं रुकते, मगर हमारे ये आंसू। आगे कहा गया कि तुम इसको छूना मत, आंसू को छूते ही हाथ तुम्हारा जल जाएगा, इस आंसुओं को छूना मत, ये अग्नि के अंगार की तरह है, भिरे के आंसू है ना, तो वैसे आंसू उन्होंने बहाए मान मंदिर में, मान सरोवर में, जमुना पार। और यहाँ पर शिवजी महाराज ने आंसू बहाए हैं भगवान की आशा में, ये हमको थोड़ा समझ में आता है ये थोड़ा हमारे समझ में आ सकता है ना कि भाई इसको चाहते हैं। हाँ, कभी तो समझ में आएगा, इसकी आशा हम कर सकते हैं यहाँ बैठ के कि हमारे समझ में कभी ना कभी आ जाएगा ये रहस्य की बात जो है, इसलिए यहाँ पर कोई राक्षसों को प्रवेश नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि उनको यहाँ पर बड़ी उत्कट लीला दिखानी है, करनी है, लोगों को आनंद देना है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उनको। तो ये जगह आशेश्वर महादेव जो है बड़ी पवित्र जगह है, बड़ी उत्कट जगह है, जहाँ पर भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया उन्होंने, एग्जाम्पल दिखाया, देखो चलो आप लोगों को सीखना है सीखो, उन्होंने दिखाया कैसे रोते हैं उनके लिए, कैसे उनके दिल को खींच सकते हैं हम लोग। वो बैठे हैं महल में, मैया के गोद में बैठे आराम से मक्खन खा रहे हैं और दूध पी रहे हैं, उस कन्हैया को जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, सब सृष्टि का मालिक है, हमारे आराध्य भगवान है, वो उनके हृदय को कैसे आकर्षित करना है इसका प्रमाण उन्होंने दिया है अपने उदाहरण से। तो हम भी ये जो रोना है ना दुनिया के लिए वो बंद करना चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला ये नष्ट हो गया, ये चोरी गया, ये रोना बंद, रोना है उनके लिए रोना है खाली बस। क्राई ओनली फॉर हिम, डोंट क्राई फॉर एनीथिंग एल्स। ये दुनिया की फूटी कौड़ी के लिए रोना नहीं कभी। ये अभी आज है कल नहीं है। हा? कोई धनी है तो कल गरीब है, कल कोई पर अच्छे पोस्ट पर है तो कल फकीर बन जाएगा वो। कोई दुनिया का कोई नेता बन जाता है तो उसको हार बना पहनाते और अगले दिन हारता है तो पत्थर फेंकते हैं, अंडा फेंकते हैं, टमाटर फेंकते हैं उसके ऊपर। हाँ सब ऐसा ही है दुनिया में। किस चीज़ पर ज़्यादा खुशी मत करो और किस पर ज़्यादा रो भी मत। सब नश्वर है, सब टेम्पररी है। कोई पोस्ट यहाँ की कोई सब चीज़ जो है वो टेम्पररी है। शाश्वत चीज़ के लिए रो जाओ। रोना है तो शाश्वत वस्तु है ठाकुर जी, उसके लिए आंसू बहाओ। कुछ काम आएंगे आपको वो आंसू, उस आंसुओं से आपको उनकी प्राप्ति होगी। तो शिव जी महाराज यही बता रहे हैं कि कृपा चाहिए तो उसके लिए आंसू बहाओ, धन के लिए मत बहाओ, कोई प्रमोशन के लिए मत बहाओ, कोई फ्री में जो चीज़ चाहिए उसके लिए मत बहाओ। अरे मुझे बच्चा चाहिए, अरे लड़का नहीं है, अरे ये वो नहीं है, अरे फेलाना नहीं है, क्या फ़ायदा होगा मिलके भी। हाँ वो था ना चित्रगुप्त राजा, चित्रकेतु, उसको लड़का नहीं था। अरे लड़का नहीं, लड़का नहीं, लड़का नहीं, रो रहा है बेचारा, और सब कुछ है, राज का वारस नहीं है मेरे पास। तो आज नारद मुनि आते हैं, देख क्या है, बोले बालक नहीं है। तो बोलते हैं बालक नहीं चाहिए आपको, नसीब में आपका बालक नहीं है, नहीं होने वाला है। तो नहीं नहीं चाहिए चाहिए, और क्यों नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए चाहिए। देखो ऐसा है, एक लड़का हो सकता है आपको, लेकिन वही लड़का जितना सुख आपको देगा उससे ज़्यादा दुख देगा आपको। बोले वो दुख के आगे की बात छोड़ो, अभी को सुख चाहिए उसको प्राप्त करने का, ले लो। नाम क्या रखा? नारद मुनि बोला उसका नाम रखना हर्ष शोक, मतलब हर्ष और शोक दोनों है उसके अंदर। जन्म हुआ उसका, अरे उसको उसने कई विवाह किए थे, बहुत वारे विवाह किए थे। चलो ये पत्नी से नहीं तो ये पत्नी से, ये और पत्नी, दूसरी पत्नी, ट्राई करते रहो, कोई पत्नी से नहीं हो रहा है तो और पत्नी, ढेर सारी पत्नियां थी उसके पास। एक पत्नी को लड़का हो गया तो वो एकदम चाहती बन गई उसकी, बाकी सब अनचाही बन गए ना, होते मराठी बोलते आवड़ती ना आवड़ती, मतलब एक प्रिय पत्नी है, बाकी सब पुत्र ने दिया तो बाकी सब थोड़ा दूर हो गई, ये जो पुत्र दिया था वो बहुत प्रिय हो गई, तो वो लालन पालन है, इसी पत्नी का गौरव है, उसी को सानिध्य मिल रहा है, उसका पुत्र है, उसका आनंद मिल रहा है, राजा का ध्यान उसी पर है सब जगह पे, तो सारी बहुत खुशियाँ मना रहे सब लोग, राजा बहुत खुश है लड़का प्राप्त करके। तो बाकी रानियाँ परेशान हो गए, अरे ये तो लड़का मतलब गड़बड़ हो गया हमारा पूरा, ये लड़का उसको हो गया और हम सब अप्रिय बन गए राजा को। तो वो सारी रानियाँ मिलकर उस बालक को विष पिलाती है और बालक एक दिन मृत हो जाता है। तब ये राजा जो है इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है, जितनी खुशी उसको मिली थी उससे कई गुना अधिक रोता है वो बालक के लिए। तो फिर नारद मुनि वहाँ पर आते हैं, अंगिरा मुनि को लेकर आते हैं। क्यों रो रहे हो? बोले बालक मर गया, कोई जहर दे दिया उसको। मैंने कहा था ना आपको, यही बालक आपके दुख का कारण बनेगा। तब आप दुख के बारे में सोचने के मूड में नहीं थे, केवल सुख के बारे में सोच रहे थे आप, लेकिन वो सुख जो मिला आपको वो गया, समय के बाद में खत्म हो गया, अभी आपके सामने केवल दुख है। नहीं नहीं, मुझे बालक को जीवित करो आप, मेरे बालक को जीवित करो। तो बालक को जीवित कर देते हैं, महात्मा के अंदर गुण होता है ऐसा, शक्ति होती है। तो बालक कहता है आप कौन हो? अरे तो मेरे बालक हो। नहीं आप, हम तुम्हारे पिता है, माता है। बोले कौन से माता पिता हैं? मेरे ऐसे कई माता पिता हो चुके हैं, आप कौन से उम्र वाले हैं? अरे क्या हो गया बालक को ये, अभी तो मेरे गोद में खेल रहा था माता पिता के रूप में। नहीं, बालक जो है वो कहता है कि मेरे अनेक जन्म हो गए, उसमें बहुत जन्मों के बाद में आपका नंबर है माता पिता बनने का, मेरी यात्रा आगे जा रही है। तो बालक जो बोलता है उससे माता पिता को बड़ा बोध होता है, बोध शांत हो जाते हैं। बोले ठीक है, वो बालक फिर चला जाता है शरीर छोड़कर। तब ये राजा को अनुभूति होती है कि सब नश्वर है। हाँ, ये सब पुत्र होना चाहिए, ये धन होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, ये सब टेम्पररी है सब कुछ, ये सब जीवन के साथ में खत्म होने वाला है, तो ये सब के लिए रोना नहीं चाहिए। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हाँ, लेकिन ठाकुर जी जरूर मिलने चाहिए, वो जरूर चाहिए हमको। जिसको हम खो चुके हैं उसके लिए हम नहीं रो रहे हैं। यहाँ का धन खो गया, यहाँ का बच्चा खो गया, यहाँ पर कोई बीमारी आ गई तो रोते रहते हैं, लेकिन जिसको हमने जन्म जन्मांतर के पहले खो चुका है, हमने खो चुका है उनको, उसके लिए तड़प नहीं है, आस नहीं है, अश्रु नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए रोना चाहिए। जिसको प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए रोना बहुत जरूरी है। तो शिवजी महाराज यहाँ बताते हैं कि आप उनके लिए रो, फिर वो आपको प्रतिसाद देंगे, रिस्पॉन्स देंगे आपको, आपको मिलन कराएंगे अपना। और उनके मिलन करने के बाद में कुछ भी आशा बचती नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, सब आशा खत्म हो जाती है। अरे ध्रुव महाराज गए थे अटल स्थान प्राप्त करने के लिए, हाँ ऐसा स्थान दो भगवान जहां से मुझे कोई हटाएगा नहीं। 6 महीना तपस्या किया उन्होंने, शुद्ध हो गए एकदम, ठाकुर जी का दर्शन हो गया। ठाकुर जी बोलते हैं चलो मांग, क्या चाहिए आपको? तो जानते हैं हृदय में क्या चाहिए उसको, लेकिन वो कहते हैं कि जो मांगने के लिए मैं आया था मुझे नहीं चाहिए अभी। क्यों क्यों नहीं चाहिए? अरे इतना राजपाट छोड़कर जंगल में राजकुमार तुम आए, यहाँ पर तपस्या किया, पत्ते खाए, पानी भी नहीं पिया, बाद में सांस लेना बंद कर दिया, इतना कठोर तपस्या किया और अब बोले नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले कि आपको जो मैं प्राप्त करने आया था वो प्राप्त करने की आशा से मैं तपस्या किया और आपके रूप में मुझे हीरा प्राप्त हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके प्राप्ति के सामने जो प्राप्त करने में आया था वो टूटे कांच के टुकड़े की तरह है, कांचा है समान, इसलिए अब मुझे आप जैसा हीरा प्राप्त करने के पश्चात ये टूटे कांच के टुकड़े की अभिलाषा नहीं रही है। जैसे ठाकुर जी की प्राप्ति होती है ना, सारी प्राप्तियां तुच्छ लगने लगती। दुनिया भर की प्राप्तियां जिसके लिए हम तड़प रहे थे, पहले कष्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे थे कि चाहिए हमको चाहिए चाहिए, उनकी प्राप्ति होने के पश्चात सारी प्राप्तियां तुच्छ बन जाती है। नहीं चाहिए ऐसा भक्त बोलता है, अपने आप बोल लेता है, कोई बोलने की जरूरत नहीं उसको, ऐसा बोलो वैसा बोलो, ऐसा बोलना चाहिए वैसा बोलना चाहिए, स्वतः बोलने लगता है कि नहीं चाहिए सर, आई डोंट वॉन्ट, नहीं नहीं टेक इट ले लो, नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए, बोल रहे हैं ठाकुर जी, बोल रहे स्वयं ले लो, मैं आपको ध्रुव लोक दे रहा हूँ जो इंद्रलोक से बेहतर है, उत्तान पाद के लोक से भी बेहतर है, नहीं चाहिए बोलता है। फिर ठाकुर जी बोलते मेरी इच्छा है कि तुम ले लो उसको, राज करो। नहीं मेरा क्या होगा, मैं फिर फंस जाऊंगा उसके अंदर, मैं आपको वरदान देता हूँ 36,000 साल तक तुम वहां रहोगे, राज करोगे, ऐश्वर्य का भोग लोगे, लेकिन तुम्हारे मन में कभी भी आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी, और 36,000 साल के एंड में मेरी प्राप्ति करोगे आप, मुझ तक पहुंच जाओगे। ऐसा जब वरदान देते हैं तभी वो हाँ बोलते हैं, फिर राजा बनते हैं। बाकी लंबी कथा है भागवत में उनकी, राज्य करते हैं, बड़ा सुंदर शुद्ध भक्त है भगवान के, राज ऋषि बन जाते हैं। तो हमको ये यकीन होना चाहिए, भागवत क्यों पढ़ते हैं हम, इस यकीन को प्राप्त करने के लिए कि ठाकुर जी की प्राप्ति के पश्चात सारी अन्य प्राप्तियां तुच्छ बन जाती, नगण्य बन जाते एकदम। हाँ त्यक्त्वा तृणमशेष मंडलमति श्रेणीम तथा तुच्छवत्। सभी गोस्वामियों ने यहाँ पर आने के लिए, यहाँ का आनंद लेने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए सब कुछ ऐश्वर्य जो है ना इसे तृण के पत्ते की तरह फेंक दिया उसको। श्रेणीम तथा यथा तुच्छवत्, तृण कैसे कैसा कोई तृण का पत्ता आया तो फेंक दिया हमने, कोई वैल्यू नहीं उसकी, ऐसा समझकर सारा अपना दौलत जो था उसको नुछावर कर दिया उन्होंने एक ठाकुर के रत्न की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वो रत्न ही ऐसा है। तो हम लोग भी यहाँ पर उसी रत्न की प्राप्ति के लिए आते हैं। हाँ हम लोग अभी एक दिन छुट्टी लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं, पिकनिक मनाने ही आए हम लोग, पिकनिक तो है बैकग्राउंड के अंदर, लेकिन वास्तव में हम नंदलाल के चरणों का आश्रय लेने के लिए आए हैं यहाँ पर कि ठाकुर जी हम आपकी अभिलाषा में आए हैं, हम आपको चाहते हैं, हम चाहे कुछ भी हो, हम कोई फार्मासिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब ठीक है, मौत के सामने क्या वैल्यू उसकी। अरे मौत आया यमदूत, बोले अरे डॉक्टर हूँ मैं, मैं उधर डायरेक्टर हूँ भक्ति वेदांत का, इधर का भी उधर का भी, अरे हटो चलो ले जाओ इसको हटाओ और हाथ बाप बांध के खींच लो उसको, कोई वैल्यू नहीं। अरे मैं भारत का पंत प्रधान मनमोहन सिंह हूँ, दाढ़ी पकड़ के उसको खींच लो उसको, है ना, कोई वैल्यू नहीं है हमारे सारे धन की और पद की, पोजिशन की और अधिकार की और इतने बुद्धि की, हाँ कोई वैल्यू नहीं है, सारे वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन बोलेंगे हरे कृष्णा, बोले इसको हाथ मत लगाओ ये हमारा एरिया नहीं है, वो उसने बोला था हमको अजामिल के समय पे, हमने पढ़ाई की थी उस समय, बहुत सीख लिया था उस समय, हम गए थे उसको पकड़ने के लिए, उसने ठाकुर जी का नाम नारायण लिया तो कोई 4 लोग आ गए उधर, पता नहीं क्या पावर थी उनके अंदर, हमको परास्त कर दिया उन्होंने, हम जो निष्प्रभ हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए उसके सामने। यमराज से जाकर सलाह किया, कौन थे वो लोग, यमराज ने हमको सिखाया था कि जहाँ पर कृष्ण का नाम लेते हैं वहाँ पर जाना नहीं, कोई काम नहीं आपका उधर, समझे ना, बाकी जहाँ पर जो ड्यूटी लगाया वहाँ पर जाना करो, जहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र है, जहाँ कंठी माला पहनी हुई है, वहाँ पर जाने का कोई काम नहीं आपको। अरे भाव फकीर है वो रास्ते का, कोई बात नहीं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं ना, वहाँ पर जाने का नहीं, केवल विष्णुदूत आएंगे उसको ले जाएंगे, वो हमारा उनका प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे जो है ना डिग्री विग्री जो है ना, ये जो टोपी पहनी ऐसी टोपियाँ पहन के जाएंगे उधर, तो वो उधर कोई वैल्यू नहीं उसको, उधर पकड़ के लेके जाएंगे उसको। म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है हमारे मुंबई में और कुत्तों को पकड़ के ले जाती है, भोंकने वालों को, हाँ पकड़ के लेके जाती है, गाड़ी बंद कर देती है, कुछ कुत्तों को खादने लगाते हैं वो लोग। पता है कौन से कुत्ते होते हो, बोलो कौन से कुत्ते होते हैं, जिनको बेल्ट लगा होता है ना, बेल्ट, जिसका कोई मालिक है, ऐसे कुत्ते को खादने लगाते हो, बिना पट्टे वाले को उठा के ले जाते हैं। इसलिए हम सब लोग पट्टा पहनते हैं, ये सब हमारे कुत्ते का पट्टा है, ये पट्टे को देखकर हमारे जो म्यूनसिपालिटी गाड़ी आती है ना यमदूत की, वो हमारे से तो पास में नहीं आती, भले हम सो रहे हैं फिर भी वो हमारे पास नहीं आती, दूर से चली जाती है। पावर है इसके अंदर, मुख में हरिनाम, कंठ में तुलसी कंठी क्यों पहनते हैं, यमराज का भी हिम्मत नहीं है ऐसे व्यक्ति को हाथ लगाने का। तो हम लोग रोते हैं, रोना चाहिए उस वस्तु के लिए, ये सब बेकार के वस्तु के लिए रोने के फड़ने का फायदा क्या है। ठाकुर जी के रोना सीखो, वो रोने को सीखने के लिए जिंदगी दी है हमको। सब लोग शिव जी से प्रार्थना करो कि हमें भी वो भाव दो, जो भाव आपके अंदर था, जिस भाव के कारण ठाकुर जी विवश हो गए आपको दर्शन देने के लिए। हाँ, उन्होंने योजना बनाया, उन्होंने प्लान किया क्या करना है और दर्शन दिया, उनको पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं, रोने वाले हैं अभी, अपना आस्त्र निकालेंगे, रोएंगे, फिर मुझे बुलाया जाएगा, उनको पता नहीं, खाली रो रहे। योजना वहाँ बन रही है, अपने आप बना रहे हैं, वैसे हमारे लिए भी योजना बनाएंगे, आप खाली रो उनके लिए बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा जपो जैसे कोई बालक अपनी माता के लिए रोता हो, खिलौने के लिए नहीं, मिठाई के लिए नहीं, चॉकलेट के लिए नहीं, जब माता के लिए रोता है तो माता भाग के आ जाती है। तो ये रोना भी हरे कृष्ण मंत्र यही रोना ही, ये उनके लिए उनकी प्राप्ति के लिए रोना है ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जब बालक की तरह रोएंगे तो ठाकुर जी जो है वो भाग भाग के आएंगे और दर्शन देंगे, बुलावा आएगा, बुलावा, सखी आएंगे, आओ आओ, बुला रही हैं, इसने भगा दिया, वही बुला रही हैं अभी, आ जाओ, भाग रहे हैं, अरे बुला रहे हैं, बुलावा आ रहे हैं, हाँ हमारे लिए बुलावा आएगा। वैसा रोएंगे तो, हाँ नाटक का रोना नहीं, नाटक रोएंगे, अरे आएंगे, कोई नहीं आएगा, जो आ रहे हैं वो भाग जाएंगे, सोचा जो जाए उसको लेने के लिए, नहीं नकली आदमी रो रहे हैं, भागो, चलो कोई काम नहीं अपना यहाँ पर। क्योंकि हृदय के भाव को ठाकुर जी बड़ा समझते हैं, हम सबको चीटिंग कर सकते हैं, अपने आप को भी चीट कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी को कोई चीट नहीं कर सकता, वो सबके दिल का भाव समझते हैं, कौन किसके अंदर क्या है, मन में क्या पॉलिटिक्स है, मन में क्या उसके, सब ठाकुर जी जानते हैं। जो प्रामाणिक है, सीधा साधा है, सरल हृदय है, उनको ठाकुर जी सब कृपा करते हैं, और जो सरल हृदय बनते हैं, दिखावा करते हैं, उसको फटकारते हैं, भगा देते हैं उसको। इसलिए हमारे काम में, हमारे सेवा में, हमारी नौकरी में, हमारे घर गृहस्थी में, हमको एकदम सिंपल रहना चाहिए, मन में कोई किंतु हेतु नहीं होना चाहिए, वी शुड बी सिंपल हार्टेड, प्रामाणिक, सिंसियर, ऑनेस्ट होना चाहिए। वो व्यक्ति के अंदर कितने भी दुर्गुण होंगे, लेकिन वो प्रामाणिक होगा, नम्र होगा, ठाकुर जी सब सही कर देंगे उसका, जो कमी है वो पूरी कर देंगे, जो है वो बचा के रखेंगे उसका, स्वयं कल्याण करेंगे उसका। तो आइए सब लोग हम शिवजी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वो हम पर कृपा करें, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति हमको दे सकते हैं, उनका अधिकार है। नित्य कृष्ण प्रति, कृष्ण भगवान को देने में वो समर्थ है, हमको हमको कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। बोलो आशीश्वर महादेव की, आशीश्वर कुंड की, आशीश्वर वन की, श्री कृष्ण बलराम की, प्रेमा भक्ति की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताई गौर प्रेमानंदे हरिवो। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा।